मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 2 फरवरी 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक अलग ही विषय के बारे में आप सबसे बात करने जा रहा हूं और विषय हम सबसे ही जुड़ा हुआ है, बहुत ही गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। विषय यह है कि हम सब परिवार में रहते हैं, परिवार के कुछ मेंबर्स होते हैं। परिवार के देखिए दो रूप हैं, एक तो संयुक्त परिवार है जिसे हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, जिसमें दादा दादी और फिर ताऊ चाचा चाची ताई और फिर और भी दूसरे जितने भी सदस्य होते हैं एक साथ रहते हैं, कई भाई और उनका परिवार एक साथ रह रहा है। और दूसरे जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस फैमिली, यानी कि एकल परिवार, हिंदी में उसे एकल परिवार कहा जाता है, जिसमें हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, जब तक पढ़ रहे होते हैं उनके साथ होते हैं, फिर हो सकता है कि पढ़ने के लिए वो बाहर चले जाते हैं, फिर वो अपने नौकरी और काम में लग जाते हैं तो फिर उनका अपना परिवार बन जाता है। तो इस तरीके से दो तरह के हमारे पास परिवार के स्ट्रक्चर भारत में मौजूद हैं। तो मित्रों, जब हम कुछ लोगों के साथ रहते हैं, डेफिनेटली हम अकेले तो नहीं रहते, कुछ लोगों के साथ रहते हैं, तो जब हम साथ में रहते हैं तो डेफिनेटली कुछ टकराव होते हैं, कुछ समस्याएं आती हैं और वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स सच पूछे तो दिमागी रूप से हमें परेशान कर देती हैं। हमें ये लगने लगता है कि हम जो कुछ भी करना चाह रहे हैं कैसे करें, हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, कंसंट्रेशन किसी काम में लगता नहीं है, जम नहीं पाता। और फिर यूं कह लीजिए कि मन में एक अलग किस्म की चिड़चिड़ाहट, झल्लाहट, खालीपन, निराशा का भाव पैदा होता है। तो आज मैं मित्रों इसी समस्या पर आप लोगों से थोड़ी सी कुछ बातें करने जा रहा हूं। शायद इस बातचीत के दौरान कुछ एकाध काम की बात निकल आए। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि हमें इस बात को बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार कर लेना चाहिए, और वह यह कि हमारा जो फैमिली का स्ट्रक्चर है, जो पारिवारिक संरचना है, संरचना का मतलब मैं रिश्तों की बात नहीं कर रहा हूं, जिस तरीके से परिवार में काम होता है उस संरचना की बात कर रहा हूं, वो बेहद जटिल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इतने सारे रिश्ते, रिश्तों को निभाने के इतनी सारी परंपराएं, इतने सारे तौर तरीके, फिर फैमिली में इतने सारे लेयर्स। हमारी पारिवारिक संरचना को भी आप देखेंगे तो आपको वैसे ही स्ट्रक्चर दिखेगा जैसे कि ब्यूरोक्रेसी में आप चले जाइए ना, नौकरशाही में, तो ये सीनियर, ये जूनियर, ये बीच का है, ये जूनियर मोस्ट है तो सीनियर की बात जूनियर मानेगा, और ये वो सारी की सारी जो हमने ब्यूरोक्रेसी की जो तहजीब भी अपनी बनाई है, सच पूछिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो फैमिली के स्ट्रक्चर पर बनाई है। इसके साथ ऐसे बात करना है, जब दो लोग होंगे तब ऐसे बात करना है, ऐसे बैठना है, ऐसे सोना है, ये करना है, ये नहीं करना है, और वो इतनी जटिल है, इतनी जटिल है कि सच पूछिए तो अगर आप लिस्ट बनाने बैठेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे तो वो संभव ही नहीं है। अब ये बात अलग है कि चूंकि हम उस जटिलताओं में हम पैदा होते हैं, उसको बचपन से देख रहे हैं, थोड़े से समझदार हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो उनको निभा भी रहे हैं, तो हमारे लिए वो आसान सी चीजें होने लगती, सरल सी चीजें होने लगती हैं। लेकिन आगे चलकर क्या होता है मित्रों? आगे चलकर होता यह है कि इन जटिलताओं को निभा पाना आसान नहीं होता, और उसका जो परिणाम हमारे सामने आता है वो टकराव के रूप में सामने आता है। इसलिए आप देखिए कि किस तरीके से धीरे धीरे जो संयुक्त परिवार हैं वो हमारे यहां के टूट रहे हैं, टूट रहे हैं। उसका एक कारण तो आर्थिक व्यवस्था है ही, कि जो संयुक्त परिवार है बेसिकली वो कृषि पर आधारित होती है, जो कृषि पर आधारित अगर अर्थव्यवस्था होगी तो बट नेचुरल है कि वहां संयुक्त परिवार होंगे, वो एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलकर खेत पर काम करते हैं, एक साथ अपने जीवन यापन करते हैं। जमीन को आप उस तरह से बहुत ज्यादा टुकड़ों में अगर बांट देंगे तो उसका बंटवारा फायदेमंद नहीं रह जाता, तो वहां एक आर्थिक कह लीजिए मजबूरी भी होती है कि वो एक साथ रहे। लेकिन जैसे ही कृषि आधारित अर्थव्यवस्था टूटती है और खासकर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था आती है, तो अब आपको तो नौकरी करने जाना है, पता नहीं फैक्ट्री कहां है, आप कहां के थे, तो वहां स्वाभाविक तौर पर एकल परिवार अस्तित्व में आने लगते हैं। मित्रों, इसकी बात मैं दोनों की इसलिए कर रहा हूं कि हम सबसे पहले संकट को समझने की कोशिश करें कि इनफैक्ट ये संकट है कहां, किस तरीके का संकट है। तो मित्रों, जो अब हम अपने परिवार में जो संकट देख रहे हैं और खासकर नई पीढ़ी इसको लेकर के जो बहुत परेशान हो जाती है, झुंझलाहट में भर जाती है और उसको अपना कोई भविष्य दिखाई नहीं देता, उस संकट के मूल में सबसे बड़ा जो कारण है वो है संक्रमण काल। संक्रमण काल का मतलब है कि जो हमारी ज्वाइंट फैमिलीज के जो वैल्यूज थे वो टूट रहे हैं, वो बने रह ही नहीं सकते, वो टूटने ही टूटने हैं, और जो एकल परिवार हैं उनके मूल्य अभी एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं। अब इसमें जो मूल्य आएंगे, आप देखिए, जो एकल परिवार में आएंगे वो कहीं ना कहीं ज्वाइंट फैमिली से ही ट्रांसफर होंगे, वहीं से चल करके वो यहां पहुंचेंगे, लेकिन ज्यों के त्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि जब वो एकल वाले ढांचे में आएंगे तो उस ढांचे के अनुसार जो संयुक्त परिवार के मूल्य हैं उनको ढलना पड़ेगा, और अगर वो नहीं ढलते हैं एकल परिवार में यहां के हिसाब से, तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, एक जबरदस्त विवाद की स्थिति पैदा होगी, और सच पूछिए तो अभी वह स्थिति आ रही है, आ चुकी है। तो पहली बात जो मैं इस समस्या के समाधान के लिए कहना चाहूंगा वो ये है कि इस प्रॉब्लम को लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब संयुक्त परिवार रह ही नहीं गए हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे शहरों में अभी भी संयुक्त परिवार हैं, लेकिन सामान्यतः वो धीरे 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 वो भी तब्दील हो रहे हैं, या कह लीजिए कि संयुक्त परिवार के जो पहले मूल्य रह गए थे वहां भी अब वो मूल्य नहीं रह गए हैं, उनमें बदलाव आ रहे हैं। और सच पूछे तो मैं तो मूल्यों के बदलाव का मित्रों समर्थन करता हूं, हो सकता है कि आप मेरे पक्ष में न हो, क्योंकि जब समय बदल रहा है तो मूल्य भी बदलेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि वो मूल्य बदल किस तरीके से रहे हैं, किस जो नए मूल्य आ रहे हैं वो कैसे हैं, और जो पुराने खत्म हो रहे हैं वो कौन से हैं। अगर अच्छे मूल्य खत्म हो रहे हैं और बेकार मूल्य आ रहे हैं तब तो चिंता की बात है। खैर, तो जैसे ही हम इस समस्या को समझ लेते हैं तो हमें ये लगता है कि भाई ठीक है, अब है तो है, बरसात है, बरसात के दिन में तो वर्षा होती ही है तो पानी बरसेगा ही, ठंड के दिन है, ठंड पड़ती ही है तो ठंड पड़ेगी ही। तो इसे एक, मुझे लगता है कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया माने, क्योंकि जब आप स्वाभाविक प्रक्रिया मान लेंगे तो आप देखेंगे कि इससे जूझने की आपको एक शक्ति मिलती है, क्योंकि आपको अदरवाइज आपको क्या लगता है, मुझको क्या लगता है, सबको क्या लगता है, ये लगता है कि नहीं यार, ये जो मामला है ना, ये संकट का जो मामला है, ये सिर्फ मेरे ही परिवार का मामला है, दूसरे परिवार तो सब बड़े खुश रह रहे हैं, हम साथ साथ हैं, हम सब साथ हैं, बाहर सब मुस्कुराते हुए आते हैं, सब कितना अच्छा लगता है, तो उनको लगता है कि नहीं यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सच ये है मित्रों कि ये सभी परिवारों की समस्या है, और मैं आपको बता दूं कि ये केवल संयुक्त परिवारों की ही समस्या नहीं रह गई है, बल्कि अब तो एकल परिवारों में भी ये प्रॉब्लम आने लगी है, टकराव की प्रॉब्लम, और वो इसलिए क्योंकि अभी भी चाहे वो परिवार एकल हो या संयुक्त हो, उसमें दो पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, रह रही हैं और रहेंगी ही, दो पीढ़ियां तो रहेंगी ही, माता पिता और उनके बच्चे, तो दो पीढ़ी तो हो गई। ये जो दो पीढ़ियां हैं इनके मूल्यों में अब बहुत जबरदस्त बदलाव आ गया है, पहले इतनी तेजी से बदलाव नहीं आते थे, अब तो आप देखिए कि टेक्नोलॉजी ने आदमी को इतना ज्यादा गतिशील कर दिया, फास्ट बना दिया है कि मुझे लगता है कि 5-5 साल में पीढ़ियां बदलने लगी हैं। पहले पीढ़ियों का जो कैलकुलेशन होता था वो बेसिकली 25 साल का होता था, कि 25 साल की एक पीढ़ी, फिर 25 साल की एक पीढ़ी, तो इस तरह से एक परिवार में लगभग 3 पीढ़ियां आपको देखने को मिल जाती थी, अब तो 2 पीढ़ियां मिलती हैं, और अब जो समय आ रहा है पता लगा कि अब आपको एक ही परिवार में 10 पीढ़ियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि 5-5 साल का जो गैप है, 5 साल के पहले, अब पहले जो लोग थे उनके उनका वैल्यू सिस्टम डिफरेंट था, उसके 5 साल के बाद जो हुआ उनका वैल्यू सिस्टम डिफरेंट हो गया, अब तो 2 भाई और 2 बहनें, जो बहन उससे 5 साल छोटी है, जो भाई उससे 5 साल छोटा है, तो बड़ा भाई और बड़ी बहनें यही कहती हैं कि यार हमारे समय में तो ये होता था, इस समय में ये हो रहा है, अरे बाप रे, 5 साल में समय इतना आगे बढ़ गया, इससे क्या हो रहा है, इससे हो ये रहा है कि नई पीढ़ियों में भी आपस में मूल्यों की समानता नहीं रह गई है, और जहां मूल्यों की समानता नहीं होगी देखिए वहां टकराव स्वाभाविक है। तो दोस्तों पहले तो आपको ये 2 बिंदु समझ लेने चाहिए, संयुक्त परिवार और एकल परिवार की जो मूलभूत समस्या है, आप इसको समझ लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी चेतना उसके लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम को समझ लेते हैं तो मान करके चलिए कि आधी समस्या तो सुलझ जाती है। अब देखिए मैं आपको 2-3 पॉइंट और देना चाहूंगा समस्या से निपटने के लिए। देखिए होता क्या है कि परिवार है, परिवार को एक साथ रहना है, तो दोनों चीजें होती हैं, कहीं हम अपनी बात मनवाते हैं और कहीं हम दूसरों की बात मानते हैं, यानी कि एक संतुलन का बिंदु आता है, कहीं हम सरेंडर करते हैं, कहीं सामने वाला हमारे सामने सरेंडर करता है, हमें लगातार इस व्यवहार को लेकर के चलना चाहिए, और फिर थोड़ा सा समझना चाहिए कि जो परिवार के सदस्य हैं जिनसे थोड़ी सी टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, वो टकराव के पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो कौन से बिंदु हैं जो टकराव की स्थिति को ला देते हैं। मित्रों, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर सच में किसी बिंदु पर टकराव हो रहा है या किन्हीं बिंदुओं पर टकराव हो रहे हैं तो आप उन बिंदुओं को किनारे कर दे, मत टच कीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? उससे जिंदगी में आपको भ्रम हो सकता है कि बहुत फर्क पड़ जाएगा, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात है परिवार में सामंजस्य का बना रहना। देखिए, लड्डू अच्छे खासे लड्डू होते हैं, एक लड्डू होता है, दो लड्डुओं को आपस में टकरा दीजिए तो वो बूंदी में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में रह जाते हैं, लड्डू बूंदी बन जाते हैं। टकराव का तो यही एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अगर आपको बूंदी पसंद है तो फिर बात अलग है। तो दोस्तों, जो विवादास्पद पॉइंट होते हैं उन्हें नोट कर लें और उसे अपनी तरफ से उठाएं ही मत, और अगर सामने वाला उठा रहा है तो उसे अवॉइड करके निकल जाएं। बहुत से तो हम रास्ते में, आप चल रहे हैं रास्ते में, कहीं गंदगी पड़ी हुई तो आप क्या करते हैं, उसके ऊपर से थोड़ी चलते हैं, अवॉइड करके निकल जाते हैं, किनारे से निकल जाते हैं। ऐसा आप भी कर लीजिए। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि कुछ बीच के रास्ते निकाले जाने चाहिए और निकाले जा सकते हैं भी। मतलब ऐसा नहीं है कि रास्ते निकाले ही नहीं जा सकते, रास्ते होते ही नहीं है। तो दोस्तों, ये मैंने थोड़ी सी बातें बताई। और तीसरी चीज ये भी कर लीजिए ना, अपना अपना इम्यून पावर होता है, थोड़ा सा धीरे धीरे अपना इम्यून पावर भी डेवलप कर लें, मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ा लें, अवॉइड करके चीजों को चलें, फिर आप बर्दाश्त कर जाएंगे। अदरवाइज ऐसे भी लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां महसूस करने लगते हैं। तो जब इम्यून पावर मजबूत हो जाएगा तो वो परेशानियां फिर महसूस करने की स्थिति भी बहुत कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ बातें अपनी तरफ से रखी हैं, आप सब देखें कि इसमें से क्या क्या किया जा सकता है अगर आप इससे दुष्प्रभावित हैं तो, अदरवाइज एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, आज जैसा कि मैंने कहा कि शुक्रवार है, सैटरडे संडे आप एंजॉय कीजिए, मंडे को फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दें और मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।